नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
अब कर्ण की इनकी बहुत लड़ाइयां हुई। युधिष्ठिर महाराज तो कर्ण के साथ में युद्ध करते करते हार गए, थक गए, जैसे तैसे वो छावनी में पहुंचा दिए गए। इसके बाद की कथा है, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। संजय कहते हैं कि महाराज अर्जुन इधर अश्वत्थामा से बहुत बड़े भारी युद्ध के अंदर उलझे हुए थे। अश्वत्थामा बहुत बड़ी सेना लेकर अर्जुन पर आक्रमण करने लगा, अर्जुन ने उनको रोक दिया। अश्वत्थामा झल्ला उठा, वह बाणों की मार से कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करने लगा। यह देखकर अर्जुन ने हंसते हंसते दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु अश्वत्थामा ने उसका निवारण कर दिया। उस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करने के लिए जिस जिस शस्त्र का प्रहार किया, उन सबको द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने काट दिया। उसने अपने बाणों से दिशाओं तथा उप दिशाओं को ढककर श्री कृष्ण की दाहिनी बाह में तीन बाण मारे, इधर दाहिनी बाह में। तब अर्जुन ने उसके घोड़ों को घायल करके संग्राम में खून की नदी बहाई। उन्होंने अश्वत्थामा का धनुष काट डाला। यह देख उसने अर्जुन पर वज्र के समान भयंकर परिक का प्रहार किया, अर्जुन ने उसको भी काट डाला। अश्वत्थामा का क्रोध बढ़ गया, उसने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया, तो अर्जुन ने महेंद्रास्त्र का प्रयोग किया, साथ ही अश्वत्थामा को भी बाणों से ढक दिया। द्रोण कुमार ने अपने सहायकों से उन बाणों को काट दिया और 100 बाणों से कृष्ण को तथा 300 बाणों से अर्जुन को बीन दिया। अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के मर्मस्थल पर 100 बाण मारे और सारथी और घोड़ों को मार दिया, नीचे गिरा दिया। अश्वत्थामा स्वयं घोड़ों की बार डोक संभाल करके कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करने लगा। सब लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। अब वे घोड़े बाणों की मार से अत्यंत पीड़ित होकर भाग चले और पांडवों ने विजय का शंख बजा दिया, अश्वत्थामा को वहां से खदेड़ दिया, अश्वत्थामा की सेना भी चली गई। इधर दुर्योधन ने बड़े स्नेह के साथ कर्ण से कहा, कर्ण देखो ये पांडवों ने हमारी इस विशाल सेना को बड़ा कष्ट पहुंचाया है। अरे कर्ण, तुम्हारे रहते हुए हमारी ये सेना भय के कारण भागी चली जा रही है, कितनी अनुचित बात है। पांडवों को खदेड़ते हुए हमारे हजारों योद्धा अब तुम्हें ही सहायता के लिए पुकार रहे हैं, और क्या करें। दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण खूब हंसा और उसने भार्गवास्त्र का संधान किया। फिर तो लाखों करोड़ों अरबों बाण प्रकट हुए जो अग्नि के समान प्रज्वलित थे। उन भयंकर बाणों से पांडवों की सेना ढक गई और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। भार्गवास्त्र की मार से हजारों हाथी घोड़े रथी पैदल प्राणहीन होकर गिरने लगे। पृथ्वी कांपने लगी, पांडवों की संपूर्ण सेना व्याकुल हो गई। कर्ण के द्वारा मारे जाते हुए पांचाल चेदी देशीय योद्धा भय के मारे भागने चिल्लाने लगे और कभी कृष्ण को, कभी अर्जुन को, कभी दोनों को पुकारने लगे। कर्ण के बाण से मारे जाते हुए श्रृंजयों का आर्तनाद सुनकर कुंती नंदन अर्जुन ने भगवान वासुदेव से कहा, हे महाबाहो श्री कृष्ण, आप इस भार्गवास्त्र के पराक्रम को तो देखिए, कैसा विचित्र अस्त्र है। युद्ध में किसी तरह भी इसका नाश नहीं किया जा सकता है। उधर कर्ण अपने घोड़ों को बढ़ाता हुआ बारंबार मेरी ओर आ रहा है। इस समय उसके सामने से भाग जाना भी मैं ठीक नहीं समझता हूं, बताइए क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया है, इस समय उनसे मिलकर उनको धीरज देकर और फिर कर्ण का वध करना चाहिए। यह कहकर जनार्दन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आगे बढ़े। वास्तव में उनका उद्देश्य तो यह था कि जब तक अर्जुन धर्मराज से मिलेंगे तब तक कर्ण युद्ध करते 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 खूब थक जाएगा, फिर उसके बाद अर्जुन भगवान की आज्ञा के अनुसार उसे मारने में सुविधा प्राप्त करेंगे। इधर भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन अपने घायल हुए भाई को देखने के लिए रथ पर बैठे बैठे चल दिए। चलते चलते उन्होंने अपनी सेना में सब ओर दृष्टि डाली, परंतु कहीं भी अपने बड़े भाई का दर्शन नहीं हुआ। तब वे बड़े तेजी के साथ भीमसेन के पास पहुंचकर उनसे बोले, भैया भीम, राजा युधिष्ठिर कहाँ है? भीम ने कहा, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर यहां से छावनी पर चले गए हैं। कर्ण के बाणों से बहुत घायल हो चुके हैं, उनके शरीर में अत्यंत वेदना हो रही है, शायद वो किसी तरह जीवित हो सकते हैं। अर्जुन बोले, ओहो, उसमें भी संभव लगाता हूं, शायद लगाते हो, ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूं, आप शीघ्र ही उनको उनका समाचार लेने जाइए और बताइए कि कैसे हैं। कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण अवश्य वे छावनी की ओर चले गए हैं। भीम, उनकी क्या हालत है ये जानने के लिए आप शीघ्र चले जाइए, मैं यहां खड़ा होकर शत्रुओं को रोकता हूं। भीम ने कहा, अर्जुन, यदि मैं चला जाऊंगा तो ये शत्रु पक्ष वाले अभी जोर जोर से नाद करेंगे कि ये भीमसेन डर के मारे चला गया, इसलिए तुम ही जाकर महाराज की खबर ले ना। अर्जुन बोले, यही समस्या मेरे सामने है, मेरे शत्रु संसप्तक सामने खड़े हैं, आज इन्हें बिना मारे मैं चला जाऊंगा तो ये भी ऐसा ही हल्ला करेंगे। भीम ने कहा, धनंजय, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पराक्रम से संसप्तकों को मार दूंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। भीमसेन की बात सुनकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, बड़े भाई की बात मानो, इनकी आज्ञा मानो। अर्जुन ने कहा, ठीक है बड़े भैया, मैं युधिष्ठिर के दर्शन करना चाहता हूं। हे केशव, आप शीघ्र ही घोड़े हांकिए। तब भगवान गरुड़ के समान तेज चलने वाले घोड़ों को हांककर बहुत शीघ्र ही राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचे। फिर दोनों रथ से उतरकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम किए और उन्हें सकुशल देख बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन किया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने समझ लिया कि ये दोनों कर्ण को मारकर मेरे पास आए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई और गदगद वाणी से बोले, देवकी नंदन, तुम्हारा स्वागत है और अर्जुन, तुम्हारा भी स्वागत है। इस समय तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि तुम लोगों ने स्वयं सकुशल रहकर महारथी कर्ण को मार डाला है। वह सब प्रकार के शस्त्र विद्या में निपुण था, कौरवों का अगुआ था, परशुराम जी ने अस्त्र विद्या सिखाकर उसे महान शक्तिशाली बना दिया था, युद्ध में उस पर विजय पाना बड़ा कठिन था, वह विश्वविख्यात महारथी और संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, दुर्योधन का हित साधन करता था और हम लोगों को दुख देने के लिए ही तैयार रहता था, हमारे मित्रों के लिए तो वह काल के समान ही था। ऐसे महाबली कर्ण को तुम दोनों ने युद्ध में मार डाला, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या आनंद की बात हो सकती है। भैया कृष्ण और अर्जुन, आज कर्ण ने मेरे साथ भयंकर युद्ध किया था, उसने मेरे दोनों चक्र रक्षकों तथा सारथी को मार डाला, घोड़ों को मार डाला और मेरे पक्ष के बहुत से योद्धाओं को जीतकर मुझे परास्त किया। इतना ही नहीं, उसने मेरा घोर अपमान करके मुझे बहुत कटु वचन सुनाए। धनंजय, क्या कहूं, अधिक क्या कहना है, इस समय जो मैं जीवित हूं वह भीमसेन का प्रभाव है, मुझसे तो वह अपमान सहा नहीं जाता। कर्ण ने मुझे इतना घायल और अपमानित कर दिया तो अब मेरे जीने से मुझे लाभ भी क्या है, अब मैं राज्य लेकर करूंगा भी क्या। पहले कभी भीष्म द्रोण और कृपाचार्य से भी मुझे इतना अपमान नहीं मिला, वो आज इस सूत पुत्र ने किया है। इसलिए अर्जुन मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने किस रणनीति से, किस शस्त्र से और किस प्रकार कर्ण का वध किया है, ये सब शुभ समाचार सुनने के लिए मैं बड़ा आतुर हो रहा हूं। हे वीरवर, कर्ण के बाणों से जब मैं बहुत घायल हो गया तो उसका वध करने के लिए मैंने तुम्हारा स्मरण किया कि आज अर्जुन मेरे पास होता तो कर्ण को मार देता। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम दूर भी थे उस समय, कोई बात नहीं, अब तुम कर्ण का वध करके आए हो, मेरे स्मरण को सफल बना दिए हो। बताओ सूत पुत्र को तुमने किस तरह मारा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र महाराज, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की ये बात सुनकर अतिरथी वीर अर्जुन कृष्ण की ओर देखते हैं और युधिष्ठिर की ओर देखते हैं, दोनों को देख करके फिर कहने लगे, महाराज युधिष्ठिर जी, आज जब मैं संसप्तकों के साथ युद्ध कर रहा था उस समय अश्वत्थामा बाणों की वर्षा करता हुआ सहसा मेरे सामने आ धमका, मेरा रथ देखते ही उसकी सारी सेना मेरे पर टूट पड़ी, तब मैं सेना के बीच में 500 वीरों को मारकर अश्वत्थामा पर जा चढ़ा। अश्वत्थामा अपने तीखे बाणों से मुझे और कृष्ण को बहुत पीड़ा देने लगा। मेरे साथ लड़ते समय उसके पीछे 808 बैल बाणों का बोझा ढो रहे थे, 808 बैल। उसने वे सभी बाण मुझ पर चलाए किंतु मैंने अपने बाणों से उन सबको नष्ट कर डाला। उसके ऊपर मैंने वज्र के समान 30 बाण चलाए, उनसे छिद जाने के कारण उसका रूप शिकारी जानवर के समान दिखाई देने लगा। फिर तो अपने समस्त शरीर से खून की धारा बहाता वह सूत पुत्र के रथियों के दल में घुस गया। उस समय उसको दूसरे प्रधान प्रधान योद्धा भी खून से लथपथ दिखाई दिए। तदनंतर कौरव सेना को पराजित तथा सैनिकों को भयभीत देखकर कर्ण 50 प्रधान प्रधान रथियों को लेकर बड़ी तेजी से मेरी ओर चला और मैंने उसके सैनिकों का संहार कर डाला, मगर कर्ण को वहां छोड़कर मैं आपका दर्शन करने के लिए यहां इसलिए आया हूं कि वही मुझे मालूम चला कि आप छावनी में विश्राम कर रहे हैं। मैंने सुना कर्ण ने युद्ध में आपको बहुत घायल कर दिया। सच पूछा जाए कर्ण बड़ा क्रूर है, उसके सामने से आपका यहां चला आना अनुचित नहीं है। मैं समझता हूं वह समय युद्ध से हटाने का ही था। युद्ध में अपने सामने ही मैंने कर्ण के अद्भुत अस्त्रों को देखा है। पांचालों में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो आज कर्ण का वेग सह सकता। महाराज, सात्यकी और धृष्टद्युम्न मेरे पहियों की रक्षा करें, राजकुमार युधामन्यु और उत्तम औजा ये मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करें और फिर मैं इस संग्राम में महारथी कर्ण के साथ युद्ध करूंगा। आपकी भी इच्छा हो तो आइए और देखिए हम दोनों किस प्रकार एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते हैं। यदि मैं आज बलपूर्वक कर्ण को उसके बंधु बांधुओं सहित न मार डालूं तो मैं प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाले को जो कष्टप्रद गति मिलती है वो मुझे मिले। अब मैं आपसे युद्ध में जाने के लिए आज्ञा चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिए जिससे रण में मेरी विजय हो। राजन, मैं सूत पुत्र कर्ण, उसकी सेना और संपूर्ण शत्रुओं का संहार करूंगा। देखो युधिष्ठिर तो राजी हुए कि कर्ण को मार करके आए, ये कह के अब मारूंगा। युधिष्ठिर कर्ण के बाणों की चोट से बहुत कष्ट पा रहे थे। अर्जुन के मुख से जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि कर्ण जीवित है, बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरकर युधिष्ठिर धनंजय से कहने लगे, अर्जुन, तुम्हारी सेना शत्रुओं से तिरस्कृत होकर रण से भाग आई और जब तुम कर्ण को नहीं मार सके तो भयभीत होकर भीम को अकेली छोड़कर यहां भाग आए। यह तुमने बड़ा अच्छा स्नेह निभाया लोगों को कहने के लिए कि मैं तो बड़े भाई से मिलने आया हूं। अरे तुम वीर माता कुंती के गर्भ से जन्म लेने वाले हो, यह तुमने अच्छा काम नहीं किया है। दैत्यवन में तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अकेला कर्ण को मारूंगा, फिर उसे जीते जी छोड़कर तुम यहां आए। अर्जुन जब तुमने जन्म लिया था और तुम्हारी 7 दिन की आयु थी, उस समय आकाशवाणी ने कुंती से कहा था, कुंती यह बालक इंद्र के समान पराक्रमी होगा, समस्त शत्रुओं पर विजय पाएगा, यह खांडव वन में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों को जीत लेगा, राजाओं के बीच ये मद्र कलिंग केकय कौरव वीरों का संहार करेगा, संसार में इससे बढ़कर कोई धनुर्धर नहीं होगा, कोई भी प्राणी कभी युद्ध में इसे परास्त नहीं कर सकेगा, ये संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता तथा जितेंद्रिय होगा, इच्छा करते ही ये समस्त प्राणियों को अपने अधीन कर लेगा, चंद्रमा के समान इसकी कांति होगी, वायु के समान वेग होगा, स्थिरता में सुमेरु पर्वत के समान और क्षमा करने में पृथ्वी के समान होगा, सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर के समान धनी, इंद्र के समान पराक्रमी, भगवान विष्णु के समान बलवान होगा। कुंती जैसे अदिति के गर्भ से शत्रु अंता विष्णु ने जन्म लिया है, उसी प्रकार तुम्हारा यह महात्मा पुत्र है, तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है, अपने पक्ष की विजय तथा शत्रु पक्ष का संहार करने में इसकी ख्याति बनेगी और इसी से वंश परंपरा का विस्तार होगा। इस प्रकार शितसिंह पर्वत के ऊपर एक आकाशवाणी हुई थी जिसे अनेकों तपस्वियों ने सुना था, किंतु अर्जुन ये सब आकाशवाणी झूठी कर दी, देवता भी झूठ बोलने लगे। सदा तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बड़े बड़े ऋषियों के मुख से मैंने ये बात सुनी थी, लेकिन आज दुर्योधन की उन्नति के विषय में हमको विश्वास नहीं था पहले, तथा आज तक मुझे इस बात का पता नहीं था कि तुम कर्ण के भय से डरते भी हो। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या कर सकता हूं? आज कौरवों, अपने मित्रों तथा अन्य संपूर्ण योद्धाओं के सामने मुझे सूत पुत्र के वश में होना पड़ा, इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है। अर्जुन शर्म आनी चाहिए, यदि आज तुम्हारा पुत्र महारथी अभिमन्यु जीवित होता तो मैं शत्रु पक्ष के संपूर्ण महारथियों का नाश कर डालता और उसके रहते हुए युद्ध में कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता था। यदि घटोत्कच भी जीवित होता तो मुझे युद्ध से भी मुख नहीं होना पड़ता, किंतु अपने अभाग्य के लिए क्या कहूं, जान पड़ता है मेरे जन्म के पूर्व जन्म के बड़े बड़े पाप बड़े प्रबल हैं, तभी तो दुरात्मा कर्ण ने तुम्हें तिनके के समान भी न गिनकर मेरे साथ वह व्यवहार किया है जो किसी बंधुहीन और असमर्थ मनुष्य के साथ किया जा सकता है। जो पुरुष आपत्ति में पड़े हुए को उससे छुड़ाता है वही उसका सही बंधु और सुहृद होता है, ऐसे प्राचीन लोगों का कथन है। सत्पुरुषों ने भी इसी धर्म का पालन करने के लिए कहा है, परंतु तुमने नहीं किया। अर्जुन तुम्हारे पास विश्वकर्मा का बनाया हुआ रथ जिसके धुर्रे से कभी आवाज नहीं होती तथा जिसके ध्वजा पर वानर विराजमान, यही नहीं तुम्हारे हाथ में गांडीव धनुष, ऐसा कोई दूसरा धनुष नहीं, और तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा रथ हांकते हैं, इन सब के होते हुए तुम कर्ण से डरकर भाग आए। यदि युद्ध में आज कर्ण का मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी तो राजा तुमसे अस्त्र शस्त्र में बड़ा हो उसे अपना गांडीव धनुष सौंप दो। यदि तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है तो अपने से बड़ा कोई राजा हो उसको अपना अस्त्र शस्त्र गांडीव धनुष दे दो। धिक्कार है तुम्हारे गांडीव धनुष को, धिक्कार है तुम्हारे भुजाओं के पराक्रम को, और धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को, अग्नि के दिए हुए इस रथ और ध्वजा को भी धिक्कार है। युधिष्ठिर ज्यों बोले अर्जुन का क्रोध एकदम फड़क उठा, उन्होंने अकस्मात अपने म्यान में से तलवार निकाली। भगवान कृष्ण सबके हृदय की बात जानने वाले, उन्होंने अर्जुन का कोप देखते ही ताड़ लिया कि क्यों क्रोध आया है। कहा अर्जुन ये क्या बात है, तलवार तलवार क्यों उठाई, किसी से युद्ध करना है, ये तो युद्ध में तलवार उठाई जाती है, यहां तो तुम अपने बड़े भाई से मिलने आए हो। मैं किसी ऐसे मनुष्य को यहां नहीं देखता हूं जो तुम्हारे लिए मारने योग्य हो। फिर तलवार क्यों म्यान में से निकाली? तुम्हारे कोई सनक तो सवार नहीं हो गई, पागल तो नहीं हो गए? मैं पूछता हूं, इस समय ये तलवार निकालने का विचार क्यों किया? बार बार कृष्ण के पूछने पर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, गोविंद, मैंने गुप्त रूप से एक प्रतिज्ञा की है, जो कोई मुझसे यह कहेगा कि तुम अपना गांडीव धनुष किसी और को दे डालो, मैं उसका सिर काट दूंगा, चाहे कोई भी हो। राजा ने आपके सामने ऐसी बात कही कि नहीं? अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता, आज युधिष्ठिर का वध करूंगा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा और अपनी तलवार से मैं इसको खून से रंजित करके इनका सिर उतार कर यहां डाल दूंगा। इस अवसर पर क्या करना चाहिए जो मेरे मन में बरसों से बैठी हुई है कि जो कोई इसका अपमान करेगा गांडीव धनुष का सिर काटूंगा। आप इस जगत के भूत भविष्य को जानने वाले हैं, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ऐसे ऐसे पागलों की बात करते हो? आज मुझे मालूम हुआ कि तुमने कभी बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की है। अरे, क्रोध एक बहुत मूल्यवान चीज है, क्रोध को यूं ही फेंक देना, तुम क्रोध का महत्व नहीं समझते। क्रोध किस पर करना चाहिए? क्रोध अपने से बड़ों पर करना चाहिए या क्रोध अपने दोषों पर करना चाहिए? धनंजय, जो धर्म के विभाग को जानता है, वह कभी ऐसा नहीं करता। इस समय तुमने जैसा बर्ताव किया है, यह तुम्हारी मूर्खता का द्योतक है। तुम धर्म भीरु हो, जो नहीं करने योग्य काम करता है तथा करने योग्य काम नहीं करता वो मनुष्य मूर्ख कहलाया जाता है, वो अधम है। जो स्वयं धर्म का आचरण करके शिष्यों द्वारा उपासना किए जाने पर उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म के संक्षेप और विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है, तुम्हें क्या पता? तुम जानते नहीं। इस निर्णय को नहीं जानने वाला मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारी तरह असमर्थ और मोहित हो जाता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसे सहज जान लेना नहीं होता अर्जुन, इसका ज्ञान होता है शास्त्र से। शास्त्र का तुम्हें कुछ पता तो है नहीं। अज्ञानवश अपने को धर्मवेत्ता समझ लिया कि मैं जो प्रतिज्ञा करता हूं वो अच्छी है, मैं जो धर्म की रक्षा के लिए करता हूं वो अच्छा है। अरे, जिसमें जीव हिंसा का पाप होता है वह बात तुम्हारे मुंह से अच्छी लगती है? मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, परंतु उसकी हिंसा मत होने दो। भला तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष अन्य साधारण पुरुषों के समान अपने धर्मज्ञ भाई और चक्रवर्ती राजा को मारने के लिए तैयार हो गया? अर्जुन, जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, रण से भी मुककर भाग जा रहा हो, शरण में आया हुआ हो, हाथ जोड़कर खड़ा हो अथवा असावधान हो, ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं मानते। तुम्हारे बड़े भाई में सभी बातें हैं, तुमने ना समझ बालक की तरह पहले प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए मूर्खतावश अधर्मयुक्त कार्य करने में तैयार हो गए। बताओ तो भला, धर्म के दुर्बोध और सूक्ष्म स्वरूप का अच्छी तरह विचार किए बिना अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करना कहां तक उचित है? क्यों दौड़ पड़े तुम मारने के लिए? धर्म का रहस्य बताता हूं, अच्छी तरह से सुनो। पितामह भीष्म, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, विदुर जी, यशस्विनी कुंती देवी तुम्हें धर्म के जिस तत्व का उपदेश कर सकती हैं उसको मैं ठीक ठीक बता रहा हूं, सुनो। सत्य बोलना बहुत अच्छा काम है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी सत्यवादी को ही कभी कभी सत्य के स्वरूप ठीक ठीक ज्ञान होना बड़ा कठिन हो जाता है। देखो, सत्य का अनुष्ठान कैसे होता है? जहां सत्य का परिणाम असत्य और असत्य का परिणाम सत्य होता हो, वहां सत्य न बोलकर असत्य बोलना उचित होता है। जैसे विवाह का कार्यक्रम हो, किसी प्राणी के संकट आने पर उसको बचाने का मौका हो, सर्वस्व अपहरण करते समय कहीं झूठ बोलना हो, ब्राह्मण की भलाई के लिए झूठ बोलना हो, तो वो सत्य ही माना जाता है। स्त्री और पुरुष के प्रेम का प्रसंग हो, वहां भी असत्य बोलना धर्म माना जाता है। इन पांच अवसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो, उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य होता है। वहां असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है। वहां भी सत्य ही कह देना मूर्खों का काम होता है। वह मनुष्य अंधे पशु को मारने वाले बलाक के समान है, जो असत्य से सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मूर्ख गवार आदमी कौशिक मुनि के समान है, जो सत्य के द्वारा असत्य को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महाराज ये बलाक कौन है, कौशिक कौन है? बलाक ने कौन से असत्य से सत्य को प्राप्त किया और कौशिक ने कौन से सत्य से असत्य को प्राप्त किया? जरा मैं इनको सुनना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, सुनो, एक शिकारी था, उसका नाम था बलाक। वह अपनी स्त्री और पुत्रों के जीवन की रक्षा के लिए मृगों को मारा करता था, कामना या आसक्ति के वशीभूत होकर नहीं, बूढ़े मां बाप इन सब का पालन करता था, धर्म में लगा रहता था, सत्य बोलता था, किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह मृगों को मारकर लाने के लिए वन में गया, पर कोशिश करने पर भी कोई मृग नहीं मिला। इतने में उसकी दृष्टि एक शिकारी जानवर पर पड़ी जो अंधा था। वह नाक से सूंघकर आंख का काम कर लेता था। यद्यपि वैसे जानवर व्याध ने पहले कभी देखा नहीं था, पर आज तो उसको शिकार तो करना ही था। उस अंधे जानवर को उसने बाण से मार दिया। उस अंधे के मरते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और उस व्याध को लेने के लिए स्वर्ग से सुंदर विमान आया। अप्सराएं आई, गाने बजाने लगे, बहुत नृत्य आदि से उसको प्रसन्न किया। वो आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे लिए सोने का विमान, मैं तो शिकारी, उम्र भर मैंने पाप ही पाप किया, ये क्या बात हुई? बात ये थी कि उस जंतु ने पूर्व जन्म में तपस्या करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के लिए वरदान प्राप्त किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको अंधा बना दिया और वह प्राणी समस्त जीवों का अंत कर देने का निश्चय किया हुआ था, शिकारी ने उसको मार दिया। बताओ, ऐसी हिंसा से, ऐसे असत्य कर्म से जो बाहर से असत्य दिखता है, उसको सत्य की प्राप्ति हो गई ना? इसलिए धर्म का तत्व समझना कठिन है अर्जुन, चाहे जैसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार कौशिक नाम का एक ब्राह्मण, देखो भगवान के लटके हैं ये, क्या युक्तियों से समझा रहे हैं। बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, गांव से दूर नदी के बीच में अपना आश्रम बनाए हुए था। उसने ये व्रत ले लिया कि मैं जब भी बोलूंगा तो मैं सत्य ही बोलूंगा, इसलिए वो सत्यवादी के नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात है, कई लोग बेचारे लुटेरों के डर से छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो उसके आश्रम के बगल में आकर वन में घुस गए और अपने आप को छिपाए। लुटेरे भी यत्नपूर्वक पता लगा रहे थे। इतने में ही वे कौशिक के आश्रम में पहुंच गए और बोले कि ऋषिवार, बहुत से लोग इधर से आए थे क्या? यदि आए तो कौन से रास्ते से गए? हम आपसे सच्ची बात की आशा रखते हैं, यदि आप जानते हो तो बता दीजिए। कौशिक ने कहा, मैं तो सदा सत्य बोलता हूं। वो इसी वन में गए, हमारे आश्रम के पिछवाड़े से गए हैं, वृक्ष लता और झाड़ियों में जाकर छिप गए हैं, आप जाके उनको पता लगा लो। डाकू गए, पता लगाया और सब मनुष्यों को मार डाला और उनका धन था वो सब लूट लिया। और उसके बाद उस ब्राह्मण को महान पाप लगा, जितने लोग मरे सबकी हिंसा उस ब्राह्मण को लगी। तुम तो कहोगे कि ब्राह्मण तो सत्यवादी था, उसका क्या दोष? उसकी यही दोष, उसको नरक की हवा खानी पड़ी। धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म होता है, धर्म के विभाग को ठीक ठीक हर मनुष्य नहीं जानता है, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने थोड़े बहुत धर्म की व्याख्या कर दी है। कितने ही मनुष्य हैं जो परम ज्ञान रूप धर्म को तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, ये तर्क की बात नहीं है। मैंने जो यहां धर्म के स्वरूप की व्याख्या की है सारे प्राणियों को लाभ के दृष्टि से की है। इसका सार यही है कि अहिंसा युक्त है वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म प्रजा को धारण करता है। लोग स्वयं अन्यायपूर्वक धन छीन लेने की इच्छा रखते हुए दूसरों से सत्य भाषण करवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से झूठ बोलो। मैं कहता हूं जो आदमी अन्याय से धन छीनना चाहता है और कहता है कि भाई तुम तो सत्यवादी हो तुम्हारा धन बताओ, तो वहां पर तुम झूठ बोल दो, ये हमारी आज्ञा है। ऐसे आदमी सत्य के अधिकारी नहीं है अर्जुन। या तो मौन रहो और विवश होकर बोलना चाहे तो झूठ बोलो, उस कौशिक ब्राह्मण की तरह नरक में जाओगे। इसी को बिना विचारा सत्य बोलते हैं, उसका फल नहीं मिलता। प्राण संकट में हो, विवाह का अवसर हो, समस्त कुटुंबियों का प्राणांत का समय उपस्थित हो, हंसी दिल्लगी परिहास होता हो, और ऐसे समय में असत्य बोला गया असत्य नहीं होता है। जहां लुटेरे के चंगुल में फंसाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो झूठ बोल देना चाहिए कि साहब सौगन पूर्वक कहते यहां कोई नहीं आया, इधर कोई नहीं गया, कोई झूठ नहीं होता। अतः धर्म के लिए झूठ बोलने पर भी मनुष्य को झूठ का दोष नहीं लगता। मैं तुम्हारा हित चाहता हूं इसलिए मैंने तुम्हें इतनी बात कही है। बताओ अभी तुम्हारे लिए युधिष्ठिर वध्य है क्या, मारने योग्य है क्या? अर्जुन बोले हे कृष्ण, कोई बहुत बड़ा विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य यदि ऐसा उपदेश देता तो मेरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आप मेरे परम हितेशी हैं, आप मेरे माता पिता के समान हैं, आप मेरी परम गति हैं, आपने बहुत उत्तम बात बताई है, तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी बात नहीं जो आपको विदित न हो, अतः आप परम धर्म को पूर्ण रूप से तथा ठीक ठीक जानते हैं। अब मैं राजा युधिष्ठिर को मारने योग्य नहीं समझता हूं। मेरी इस प्रतिज्ञा के विषय में आप ही अनुग्रह करके कुछ ऐसी बात बताइए जिससे इस प्रतिज्ञा का पालन भी हो जाए और राजा का वध भी न हो पावे। भगवान आप जो जानते हैं वो मेरा व्रत क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया था। मनुष्यों में जो कोई यह कह दे कि तुम अपना गांडी उस धनुष किसी दूसरे वीर को दे डालो, तुम्हारे गांडी उस धनुष को धिक्कार, तुम्हारे बल पौरुष को धिक्कार, तुम्हारी अस्त्र विद्या और पराक्रम को धिक्कार, तो मैं हठात उसकी जान ले लूं। इसी तरह भीमसेन की भी एक प्रतिज्ञा है, कोई उसको तुबरक कह दे, तुबरक तुबरक माने बिना मूंछ का या अधिक खाने वाला, ऐसा भीमसेन को कह दे तो भीमसेन उसी समय अपने हाथ में लेकर उसको मसल दे। सो राजा ने आपके सामने मुझसे कहा है कि तुम अपना धनुष किसी दूसरे को दे डालो, ऐसी दिशा में मैं इन्हें मारूं भी नहीं और मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए। इसके साथ साथ एक बात और भी है, युधिष्ठिर के बिना मैं एक क्षण भी संसार में जीवित नहीं रहना चाहता। यदि मैं इनका वध करता हूं तो उसके बाद फिर मेरा भी वध होता है, तो अब क्या करूं, मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो, आप मुझे कोई युक्तियां बताओ। संसार के लोगों की समझ में मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाए, राजा युधिष्ठिर का भी जीवन बच जाए और मेरा भी जीवन सुरक्षित रहे, ऐसी कोई सलाह दीजिए। कृष्ण ने कहा वीरवर बहुत छोटी छोटी बातें करते हो, ये तो बहुत सीधी साधी बात है। महाराज युधिष्ठिर तुमको जो बोलते हैं किस परिस्थिति में बोलते हैं, देखो हर आदमी की परिस्थिति देखनी चाहिए, शब्दों को मत देखो, परिस्थिति को देखो। बेचारे थक गए थे, बहुत दुखी थे, तुम्हारे पर पूर्ण विश्वास था। कर्ण ने अपने तीखे बाणों से इनको घायल कर दिया था, ये तो जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर यहां आए हैं, इसलिए दुख में रोष में कुछ कह दिया तो उसके लिए इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, वध करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा पालन का उपाय बताता हूं, सुनो, ये तुम्हारे अनुरूप भी है। देखो ध्यान रखो, सम्मानी पुरुष संसार में जब तक सम्मान पाता है तब तक उसका जीवन जीवित माना जाता है। जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाए उस समय वह जीते जी मरा हुआ समझा जाता है। तुमने, भीमसेन ने, नकुल सहदेव ने, अन्य वृद्ध पुरुषों और शूरवीरों ने राजा युधिष्ठिर का सदा सम्मान किया है, आज तुम उनका अंशतः अपमान कर दो। यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य है, सम्माननीय है, पर अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए तुम इन्हें तू शब्द से बोल दो। गुरुजनों को तू कह देना उसका वध कर देने के समान होता है। जिसके देवता अथर्वा और अंगिरा है, ऐसी एक सर्वोत्तम श्रुति वेद में आती है कि गुरु को तू कह देना उसे बिना मारे ही मार डालना होता है। इसलिए जो मैंने तुमको बताया है धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग करो। मेरे मुख से अपने लिए तू का प्रयोग सुनकर महाराज उसे अपना वध तुम्हारे मुख से तू शब्द का प्रयोग सुनकर महाराज धर्मराज अपने आप का वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम इनके चरणों में नम्रता से प्रणाम कर इनको सांत्वना देना और अपनी कहीं भी अनुचित बात के लिए क्षमा मांग लेना। महाराज युधिष्ठिर बड़े समझदार हैं, धर्म का ख्याल रखने वाले हैं, तुम पर क्रोध नहीं करेंगे और तुम मिथ्या भाषण से और भ्रातृवध से छूट जाओगे और फिर प्रसन्नता पूर्वक उस सूत पुत्र कर्ण को मार दे। भगवान के बोलने का ले जा, सूत पुत्र, उस सूत पुत्र कर्ण का वध कर देना। अपने सखा, अपने आत्मी, अपना सुहृद, अपने आप का सब कुछ। श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर अर्जुन ने बड़ी प्रशंसा की और फिर हठपूर्वक धर्मराज के प्रति ऐसे कटु वचन बोलने लगे जैसे पहले कभी नहीं बोले थे। वे बोलने लगे युधिष्ठिर को, तू चुप रह, तू क्यों बोलता है, तू खुद तो लड़ाई से भागकर एक कोस दूर आ बैठा है, तू हमको उलाना देता है। हां, भीमसेन को मेरी निंदा करने का अधिकार है क्योंकि वो वहां पर लड़ रहे हैं, तू यहां बैठा बैठा मुझे क्यों बोलता है। असंख्य शूरवीरों, अनेकों राजाओं, रथियों, घुड़सवारों, हजारों हाथियों को मौत के घाट उतारकर काम्बोजों और पर्वतीय योद्धाओं को इस तरह नष्ट कर रहे हैं भीमसेन, जैसे सिंह मृगों को करता है, और तू अपने कठोर वचनों से चाबुक से मुझे मार रहा है। मेरे कोप को फिर आगे मत बढ़ा, तू यहीं चुप हो जा। किसने कहा? अर्जुन ने। अर्जुन बड़े धर्म भेरू थे, वे युधिष्ठिर को ऐसे कठोर बातें तो बोल तो दिए, बहुत उदास हो गए, खूब रोने लगे। युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए, मुझसे बहुत बड़ा पाप बन गया, उनके चित्त में खेद हुआ। युधिष्ठिर बार बार लंबी श्वास खींचते हुए कुछ नहीं बोले और फिर अर्जुन ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। ये देखकर कृष्ण हंसे और कहे, अर्जुन पागल तो नहीं हो गए हो, अब क्यों तलवार उठाई, मुझे जवाब दो, क्या आफत है तुम्हारी। पुरुषोत्तम, मैंने जिद में आकर भाई का अपमान रूप महान पाप कर डाला। आपने कहा कि जो तू से बोलना है वो बड़ों का वध है, तो इस दृष्टि से यदि युधिष्ठिर का वध हो गया तो मैंने ये भी प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो युधिष्ठिर का वध करेगा मैं उसका वध कर डालूंगा। तो मैंने यदि वध किया है तो इस तलवार से मैं अपना वध कर डालूंगा। पार्थ, खूब विचित्र विचित्र प्रतिज्ञाएं करते हो, अपने मन के अंदर सब प्रतिज्ञाएं रखे हुए हो, और कितनी प्रतिज्ञाएं निकालो, प्रतिज्ञा के बाण कौन से तूणीर में रखे हैं। तू मात्र कह देने पर घोर दुख में डूब गए, वाह वाह वाह, और इसके लिए तुम आत्महत्या का महापाप करने चले, और वो भी अर्जुन जैसा श्रेष्ठ पुरुष। बड़ा विचित्र धर्म देखता हूं तुम में। देखो अब मैं तुम्हारे बात बताऊं, भाई का वध करने से जिस नरक की प्राप्ति होती है उससे भी भयानक नरक तुम्हें आत्मघात करने से मिलेगा। आत्मघात कभी नहीं करना चाहिए, परंतु तुम ये भी तो चाहते हो ना कि मैं युधिष्ठिर का अपमान कर चुका तो मैं अपने आप का वध करूंगा। तो सुनो, अब तुम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करो, वो आत्महत्या के समान होता है। करो अपने मुख से प्रशंसा। तो अर्जुन कहने लगा युधिष्ठिर से, राजन मेरे गुणों को सुनिए, पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनुर्धर नहीं है। मैं वीरता में सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे सामने चराचर जगत का कोई भी प्राणी कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता है। एक क्षण में सारे संसार को नष्ट कर सकता हूं, मेरे चरणों में रथ ध्वजा के चिन्ह हैं। मुझ जैसा वीर योद्धा युद्ध में पहुंच जाए उसको कोई नहीं जीत सकता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में सब राजाओं पर मेरा एकाधिपत्य है। कृष्ण हम दोनों विजयशाली रथ पर बैठकर सूत पुत्र कर्ण का अवश्य वध करेंगे। महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाए, हमको आज्ञा दे तो मैं कर्ण को अपने बाणों से नष्ट कर डालूंगा। अर्जुन पुनः युधिष्ठिर से बोले, हे महाराज, आज देखो बड़ी सुंदर बात है। भगवान ये बात सुनकर के आंखें भरी आई भगवान की। युधिष्ठिर से बोले, अर्जुन आज या तो कर्ण की मां पुत्रहीन होगी या मेरी मां कुंती मेरे से रहित होगी। मैं सत्य कहता हूं, अपने बाणों से कर्ण को मारे बिना आज कवच नहीं उतारूंगा या वो मुझे मार देगा। आज फैसला किए बिना, मेरा और कर्ण का फैसला हुए बिना मैं युद्ध से नहीं आऊंगा। भगवान ने सुना ना कि या तो कर्ण की मां पुत्रहीन होगी और या कुंती अर्जुन के बिना होगी। तो भगवान का मन इसलिए डबडबाया कि मरेगा तो वो कुंती का ही तो बेटा। पर ये बात अभी तो भगवान खोल नहीं रहे हैं। ये कहकर अर्जुन ने तुरंत अपना हथियार धनुष नीचे डाले, तलवार म्यान में रखी, लज्जित होकर चरणों में पड़ गया। महाराज मैंने जो कुछ कहा है मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब भीमसेन अकेले लड़ रहे हैं, सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूं, मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। मैं सत्य कहता हूं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। ऐसा कहकर अर्जुन ने राजा के दोनों चरणों का स्पर्श किया और फिर रणभूमि में जाने के लिए तैयार हुए। महाराज युधिष्ठिर बड़े गंभीर अर्जुन के कठोर वचनों को सुनकर अपने पलंग पर खड़े हो गए, लंबी लंबी श्वास लेने लगे, चित्त बहुत दुखी हो गया। कहने लगे, अर्जुन मैंने अच्छे काम नहीं किए, इसलिए तुम लोगों पर घोर संकट आ गया। मेरी बुद्धि मारी गई, मैं आलसी डरपोक, मैं युद्ध के लायक नहीं हूं, इसलिए आज मैं वन में चला जाता हूं। मेरे न रहने पर तुम सुखपूर्वक रहना, महात्मा भीम ही राजा होने योग्य हैं। मैं तो क्रोधी और कायर हूं, अब मुझमें तुम्हारी ये कठोर बातें सहन करने की शक्ति नहीं है। इतना अपमान होने पर मेरे जीवित रहने का क्या काम है, मेरे जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर वे सहसा पलंग से कूद पड़े और वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपके सामने सब बातें हो रही है, मैं एक एक बात का हेतु आपके सामने रख रहा हूं, आप मेरे तात्पर्य को समझते हुए भी वन में जाने की क्यों सोचते हैं? आपको तो सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन की यह प्रतिज्ञा मालूम ही है कि जो कोई गांडीव धनुष दूसरों को देने के लिए कह देगा उसका वध होगा, फिर भी आपने उसे वैसी बात क्यों कही? इससे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरे कहने से आपका अनादर किया है। गुरुजनों का अपमान ही उनका वध कहलाता है, इसलिए मैंने अर्जुन को उकसाया है, आपके सामने कहा है, जो सत्य की रक्षा की दृष्टि से इस समय मुझे यही बात कहनी चाहिए थी, फिर भी यदि आपको अप्रिय लगी है तो उसके लिए मैं वासुदेव कृष्ण आपसे क्षमा मांगता हूं। हम दोनों आपकी शरण में हैं, ये मेरा ही अपराध है, अर्जुन का अपराध मेरा अपराध है, इसके लिए आपके चरणों पर गिरकर हम क्षमा की भीख मांगते हैं, आप मुझे क्षमा करें। आज ये पृथ्वी पापी कर्ण का रक्त पान करेगी, मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, आप सूत पुत्र को मरा हुआ मान लीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को अपने चरणों से उठाया और हाथ जोड़ करके कहा, गोविंद, हम जो कुछ कहते आप जो कुछ कहते हैं हम लोग उसका तात्पर्य समझ नहीं सकते हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सचमुच मुझसे भूल हो गई, मुझे भी गांडीव धनुष के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपने धर्म के ऐसे गूढ़ तत्व को समझाया है, आपने हमको बचा लिया है, आज आपने हम लोगों की भयंकर विपत्ति से रक्षा की है, आप जैसे स्वामी को पाकर हम दोनों संकट के भयानक समुद्र से पार हो गए, हम लोग अज्ञानवश मोहित हो रहे थे, आपकी बुद्धि ने नौका का काम करके हमको बचा लिया है, हे अच्युत, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। संजय कहते हैं, महाराज के मुख से प्रेम युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया। अर्जुन ने भगवान के कथनानुसार युधिष्ठिर का जो प्रतिवाद किया था उससे कोई पाप बन गया, ऐसा कहकर वे बहुत उदास हुए। भगवान ने कहा, अर्जुन, राजा युधिष्ठिर को तू कह देने मात्र से जब तुम इस तरह शोक में डूबे हुए हो, तो जब तुम राजा का वध कर देते तो तुम्हारा क्या होता? सचमुच धर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है, इसलिए धर्म भीरु होने के कारण अब तुम इन सब बातों को छोड़ो और अगला कार्यक्रम करो। अर्जुन ने भी बड़े लज्जित होकर राजा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, धर्म की पालना की कामना से भयभीत होकर मैंने जो कुछ कहा है उसे आप क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज, इस संसार में कोई भी अपराध होता है वो उसको धोने के लिए क्षमा से बढ़कर कोई दूसरा जल नहीं है, क्षमा सारे अपराधों को धो डालने का सबसे बड़ा शस्त्र है। उस समय युधिष्ठिर महाराज भी खूब रोने लगे, अर्जुन भी खूब रोने लगे और भगवान कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर ये तीनों आपस में खूब गले मिले और तदनंतर युधिष्ठिर ने अर्जुन को बड़ा प्यार से लगा करके मस्तक सूंघ करके कहा, महाबाहो, कर्ण के समस्त सैनिकों के सामने मेरा कवच, रथ की ध्वजा, धनुष, बाण, शक्ति, घोड़े नष्ट हुए थे, उसका बदला तुमको लेना है, यदि आज युद्ध में उस वीर को नहीं मारोगे तो निश्चय समझो कि फिर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं नकुल, सहदेव तथा भीमसेन की सौगंध खाता हूं, अपने हथियारों को छूकर सत्य की प्रतिज्ञा करता हूं कि आज या तो कर्ण और या अर्जुन दोनों में से एक सदा के लिए रणभूमि में शयन करेगा, जहां तक मुझे ऐसा विश्वास है आज कर्ण मारा जाना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, महाराज, आपकी यदि कृपा हो गई अवश्य मैं कर्ण को मारूंगा, आपकी बुद्धि के बल से हमारे पास कोई दूसरा बल नहीं है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम यदि कर्ण का वध करने में समर्थ नहीं हो तो दूसरा कौन हो सकता है, तुम ही मार सकते हो। युधिष्ठिर से बोले, महाराज कर्ण के बाणों से आप बहुत पीड़ित हो गए हो, यह सुनकर मैं अर्जुन यहां आए थे। सौभाग्य की बात है कि न तो आप मारे गए और न आपको कोई कैदखाना हुआ। अब अर्जुन को शांत करके इन्हें विजय के लिए आशीर्वाद दीजिए। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन जाओ, जो कुछ यहां घटना हो गई है उसको एकदम भुला दो। युद्ध के अंदर यहां की कोई बात तुम्हारे चित्त में पैदा ही नहीं होनी चाहिए। धनंजय, तुमने मेरा बहुत सम्मान रखा है, मैं आशीर्वाद देता हूं कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा बढ़ेगी और तुम्हें सनातन विजय प्राप्त होगी। अर्जुन ने कहा, महाराज जिसने आपको बाणों से पीड़ित किया उस कर्ण का आज ही जीने का दिन है और आज ही उसका मरने का दिन है। युधिष्ठिर का चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ कि तुम्हें अक्षय यश मिले, पूर्ण आयु मिले, मनोवांछित कामना मिले, विजय मिले, बल मिले, तुम्हारे लिए जो कुछ चाहता हूं वो सब कुछ तुमको मिले। जाओ जाओ अर्जुन, शीघ्र जाओ और कर्ण का नाश करो। तदनंतर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गोविंद अब मेरा रथ तैयार होना चाहिए। कृष्ण ने दारुक से कहा कि रथ तैयार करो। दारुक रथ लेकर के आया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करवाया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने फिर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से बहुत प्रेम से मिले और कहने लगे कि आप अर्जुन की किसी बात पर विचार मत करना, ये सब एक तरह से मेरी लीला थी। इसके बाद अर्जुन कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।